ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधु यस्तन वेद की मृचा करिष्यति या इत्तद विदुस्त इमे समास। जिसका अर्थ है, ऋचाओं के परम अक्षर ओम को जिसमें सारे देवता निवास करते हैं, जिसने उस ओम को नहीं जाना उसने वेदों को पढ़कर क्या किया। तो जितने भी देवी देवता जिनको हम मानते हैं वो ईश्वर के नीचे हैं, ईश्वर के अधीन हैं, वो भी ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए देवी देवता तक आप पहुंच भी जाओ तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष ईश्वर प्राप्ति से ही मिलता है। इसलिए उसको अद्वैत पुरखा कहा जाता है, केवल वही है, उसके अलावा दूसरी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, यदि कोई है तो माया है। तो देवी देवता भी माया के अंतर्गत आते हैं, ईश्वर केवल एक है और वो सर्वव्यापक है। इसलिए जितने भी ऋषि हुए हैं विश्व में कहीं भी हुआ हो, जो पूर्ण ऋषि है, जिसको हम कहते हैं जो आत्मदृष्टा है, उनका एक ही मत है या एक ही निर्णय है। जैसे कि महर्षि रमण कह रहे हैं कि गुरु केवल एक है, जैसे देवी देवता अनेक हैं ऐसे गुरु भी अनेक हैं, लेकिन जो पूर्ण गुरु है वो गुरु साक्षात परब्रह्म कहा जाता है उसको। इसीलिए वो गुरु केवल सारी सृष्टि में एक ही है और वो परमेश्वर है। तो महर्षि रमण तो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं इस बात के लिए। तो ये हमारी मान्यताएं हैं, ये लोकाचार है, वास्तव में इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये सब माया के अंतर्गत ही आते हैं। और जो मायापति है उसको ईश्वर कहा जाता है, उसको आत्मा कहा जाता है, उसको ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए यदि आपके मन में कोई भी धारणा है तो वो आप माया के बंधन में ही हो, आपकी उपासना भी माया की ही उपासना है, वो मोक्ष प्रदान आपको नहीं कर सकती। इसीलिए जितने भी विश्व में ऋषि हुए, अवतार हुए या सद्गुरु हुए, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना सिखाई है, और बाकी जितनी मान्यताएं हैं वो कोशिश करते हैं सारी मान्यताएं धीरे धीरे ध्वस्त हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि उससे जीव का बंधन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए मोहम्मद साहब जब हुए अरेबिया में तो उन्होंने, वहां भी यही चलन था, सैकड़ों देवी देवताओं की उपासना होती थी, तो एक एक करके सारी देवी देवताओं के उन्होंने जो कि आकृतियां थी, मूर्तियां थी, सब उन्होंने भंग की, हटवाई वहां से, और एक अल्लाह की, एक ईश्वर की उपासना सिखाई उन्होंने। तो ईसा मसीह ने भी एक ईश्वर की उपासना सिखाई थी, वैदिक काल से लेकर आज तक केवल एक ईश्वर की उपासना सिखाई गई है। तो क्योंकि हम संसार में रहते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय हमारा होता नहीं है, हम जितना भी पूजा पाठ सीखते हैं वो देखा देखी नकल करके सीखते हैं, जिधर भीड़ जा रही होती है हम भी उस लाइन में लग जाते हैं, हम भी उसमें से कुछ चीजें मानने लगते हैं। ये सब मान्यता ही तो है, कोई भूत प्रेत मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, और डरते रहते हैं। तो ये लोगों की अंधकार की अवस्थाएं हैं, अज्ञान की हालत है। वास्तव में ईश्वर सत्ता केवल एक है और वो सर्वव्यापक है। जब एक है वो तभी तो सर्वव्यापक होगी वो, अद्वैत पुरखा का क्या मतलब? दूसरी किसी वस्तु की सत्ता पूरे ब्रह्मांड में है ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में किसी की सत्ता नहीं है, केवल एक ईश्वर की सत्ता है। इसलिए जिस दिन आपको अपने अंदर उस आत्मा का बोध होता है, उसके पश्चात सारे जगत में उसी आत्मा का बोध आपको होने लगता है, और वो बोध ऐसा होता है जिसमें आपका शरीर ही नहीं रहता, ये भी आत्मा मैं ही हो जाता है। तो वो सत्पुरुष की समता अवस्था होती है, सम अवस्था होती है, जहां वो ये खुद अपने अनुभव से जानता है कि इस सारी सृष्टि में उस चेतन सत्ता के अलावा और कुछ व्याप्त ही नहीं है। तो जो उनका अनुभव है वही वाणी के रूप में प्रकट होता है, वही शास्त्रों के रूप में प्रकट होता है, वही वो आपको सिखाते हैं। बाकी अन्य कोई उपासना करोगे, उपासना से फायदा तो हो सकता है। मान लिया कोई हनुमान जी को ही मानता है, उनके रूप को ही मानता है, तो हनुमान जी की उपासना करके वो एक भय तो पैदा होगा, मैं पाप करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी इसकी। एक और भी उसके अंदर प्रेरणा हो सकती है, हनुमान ने किसकी उपासना की थी? राम की। और कौन से राम की उपासना की थी उन्होंने? राम जो शरीर रूप में थे वो तो उनके गुरु थे, लेकिन उपासना उन्होंने किसकी की थी? अंतर्यामी राम की थी। तो राम ने वही उपासना उनको सिखाई थी, इसलिए जब वो सीना चीर के दिखाते हैं तो कहते हैं कि देखो मेरे अंदर राम बसा हुआ है। कह रहे हैं मेरे हृदय में राम बसा हुआ है। तो हृदय यदि रूप है वो तो बाहर मनुष्य रूप में प्रकट हुआ है, तो रोम रोम में जो राम रम हुआ है, तो उसका दर्शन जब तक ये जीव नहीं कर लेता, उसमें स्थित नहीं हो जाता, तब तक इसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये मनुष्य ही बना रहेगा, और मनुष्य होगा तो उसकी मृत्यु भी होगी, उसका जन्म भी होगा, उससे कुछ काम बनेंगे भी, कुछ काम बिगड़ेंगे भी, उसको सुख भी होगा, दुख भी होगा, उसकी दुनिया ऐसी ही रहेगी। चाहे कोई भी देवी देवता, जिसको भी हम जिसपे भी श्रद्धा है, वो सभी देवी देवता उसी प्रकार बंधन में है जिस प्रकार मैं बंधन में हूं। मेरी कुछ लिमिटेड शक्तियां हैं, उनकी कुछ विशेष शक्तियां हो सकती है, बस अंतर इतना ही होगा, क्योंकि बंधन उनका भी वैसा ही होगा। इसीलिए आप जब पुराण पढ़ते हैं या पौराणिक गाथाएं सुनते हैं तो राक्षसों देवताओं के युद्ध होते रहते हैं। कहीं कोई ऐसा है कि चैन से जिया हो? ना कोई देवता कभी चैन से जिया, ना कभी कोई राक्षस चैन से जिया। दोनों को भय रहता है कि मेरे ऊपर कब्जा ना कर ले, तो हमेशा ही उनका युद्ध चलता रहता है। तो इसीलिए जो ये पौराणिक गाथाएं होती हैं वो सारे विश्व में हर जगह हैं। पौराणिक गाथाएं मुस्लिम संप्रदाय में भी होती हैं, पौराणिक गाथाएं क्रिश्चियनिटी में भी होती हैं, पौराणिक गाथाएं जो हैं अन्य जगह भी होती हैं। तो मनुष्य की क्योंकि लिमिटेड बुद्धि है, आकार में खड़ी हुई है, इसलिए नाम रूप से ऊपर उसकी सोच है ही नहीं। ईश्वर को भी जब भी समझेगा तो नाम और रूप करके ही जानेगा वो, इसीलिए क्योंकि उसकी लिमिटेड बुद्धि है, वो सीमा खींच लेती है अपनी, लिमिट में किसी भी वस्तु को ले आती है, इसी ईश्वर को भी वो लिमिटेड बना देती है। अनलिमिटेड ईश्वर की कल्पना तो मनुष्य कर ही नहीं सकता। इसीलिए जब तक आप किसी सत्पुरुष पर विश्वास करके उसकी वाणी को, उसके शास्त्र को, उसके वचन को गहराई से समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपका जन्म ये अंधकार में ही बीत जाएगा। इसलिए आप देखते हैं कि जितनी भी ये देवी देवताओं की उपासना है, समाज में कैसा बिगाड़ पैदा करते हैं, ये भी देखो आप। धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर कितने युद्ध हो जाते हैं समाज में, कितने मेरे देवता तेरे देवता झगड़े हो जाते हैं आपस में। दुनिया तो वैसी की वैसी खड़ी है। कितने जुलूस निकलते हैं धार्मिक, कितना अहंकार लोगों में होता है कि मेरे देवता को तूने नष्ट कर दिया, उसका देवता ही नष्ट हो गया। बोले से आप खुद देखते हैं रात दिन सोसाइटी में क्या हाल हो रहा है। ये हाल है धर्म के प्रदर्शन का, सड़क पर निकलने की जगह लोगों को नहीं होती, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितना पॉल्यूशन फैलता है, तो धर्म के नाम पर कितना बिगाड़ होता है, ये देवी देवताओं के नाम पर कितना क्लेश समाज में फैलता है, वो आस्पेक्ट भी तो देखो आप। तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। पूरी सृष्टि में केवल एक ही शक्ति है जिसको रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि सारे जगत को मेरी मां ही चलाती है, मां के अलावा कोई शक्ति है ही नहीं, सारे संसार में मां के अलावा कोई शक्ति है ही नहीं। तो किसको मां कहते थे? तो उसी ईश्वर को मां कहते थे। और विवेकानंद से कहते थे, नरेंद्र वो भजन सुना जरा। वो भजन कौन सा सुनते थे उनसे? ओ कुल कुंडलनी मां तू नित्यानंद स्वरूपिणी आधार पद्म निवासिनी प्रसुप्त भुजंगाकारा, ये भजन सुनते थे। मूलाधार चक्र को आधार पद्म बोलते हैं, वहां इसका निवास है। और जहां शिव के साथ वो शक्ति एक है, वो दसवां द्वार है। तो वहां से ये पूरे शरीर में अवतरित होती है और आपकी श्वास का भी संचालन करती है, आपके शरीर का भी पालन करती है, और शरीर जिस जगत में स्थित है उस जगत का भी पालन करती है। तो एक ही शक्ति है। और जो भी अंदर साधना करता है, उस ईश्वर की भक्ति करता है, उसी का अनुभव करता है। और वही शक्ति पहले उसको अपने रोम रोम में अनुभव होती है, और उसका जब विकास होता है उस शक्ति का हमारे अनुभव के अनुसार, तो एक अवस्था अंदर ऐसी आ जाती है कि इस शरीर का केवल खोल रह जाता है, जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे का बाहर खोल होता है और अंदर हवा होती है। तो पूरे शरीर में इसी भक्त को उस कुंडलनी शक्ति के अलावा दूसरा अनुभव ही नहीं रहता। उस समय निर्णय होता है कि रोम रोम में रमत स्वामी राम नाम भज अंतर्यामी। वो रोम रोम में स्वामी कौन सा है जो रम रहा है? अपने अनुभव से जानता है ये भक्त कि रोम रोम में रमा हुआ है। रोम रोम में क्या रमा हुआ है? वो खुद ही रोम रोम भी है और रमा भी हुआ है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसके अलावा उसके पश्चात उसका ध्यान जब और गहरा होता है, समाधि और गहरी होती है, फिर वो खोल भी हट जाता है उसका, सारा ब्रह्मांड उसको कुंडलनी रूपी अनुभव होता है, अद्वैत रूपी अनुभव होता है, उसके अलावा है ही कुछ नहीं। तो बताइए, सारी सृष्टि जो इतने नाम रूप में उसको नजर आ रही थी, कितनी वासनाएं फैली थी उसकी इस सृष्टि में, कितनी वस्तुओं में कितनी वासनाएं फैली थी, कितनी इच्छाएं फैली थी। अब बताइए, उस अनुभव के बाद कोई इच्छा बच सकती है क्या? जब वो वास्तव में अनुभव कर रहा है, साक्षात अनुभव कर रहा है, उसके पश्चात भी कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत रह जाती है, किसी का निर्णय सुनने की जरूरत रह जाती है? अपने अनुभव से जानता है कि सारे ब्रह्मांड में उस चेतन सत्ता के अलावा दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो जो ऋषि है, जो अवतार है, या जो सदगुरु है, वो उस स्थिति का मालिक है। इसलिए वाणी पढ़कर देखिए, उस स्थिति का बयान वहां किया गया है नहीं किया गया? मां जी खुद कहते थे, प्रेमी पहले ये नाद हड्डी में रोम रोम में अनुभव होता है, फिर ये नाद पहाड़ों में, नदियों में, हर जगह ही अनुभव होता है। तो बात वही आ गई नहीं अभी? चाहे वो नाद रूप कहें, चाहे वो कुंडलिनी रूप कहें, अनुभव उसका हर जगह होता है। और अनुभव जब गहरा होता है तो नाम रूप इसी कुंडलिनी में, इसी नाद में लीन हो जाता है, नाम रूप लीन ही हो जाता है। इसको वाणी कहती है सल्ले सल्ल समाया, पानी में पानी समा जाता है। जिस प्रकार लहर समुद्र में समा जाती है, कितनी लहरें हैं, अनंत लहरें हैं समुद्र के अंदर, कोई गिनती है उनकी? और लहरों का बड़ा विज्ञान है, पूरी साइंस है लहरों की भी, कितना फोर्स होता है, लहरों से बिजली कैसे बन सकती है, बड़ी बड़ी साइंस है लहरों की। लेकिन ज्ञान दृष्टि से जरा विचार करके देखो, लहर नाम की कोई वस्तु संसार में है क्या? लहर नाम की कोई वस्तु संसार में है क्या? अस्तित्व लहर का है या अस्तित्व पानी का है? विचार करके देखो, तो विचार दृष्टि से आप देखोगे लहर का तो अस्तित्व है ही नहीं। विज्ञान बहुत बड़ा है लहरों का, लहरों की क्रिया तो बहुत है, लेकिन अस्तित्व लहर का नहीं है, अस्तित्व पानी का ही है। तो लहरें अनेक हैं लेकिन पानी केवल एक है, वो अद्वैत है। सत्ता केवल पानी की है, लहर की सत्ता नहीं है। नाम रूप में सत्ता है, नाम रूप रखो तो समुद्र की लहर, नदी की लहर, छोटी लहर, बड़ी लहर, ऊंची लहर, नीची लहर, अनंत आपको नाम रूप नजर आएंगे उसमें। जब ज्ञान दृष्टि से देखोगे तब आपको, आप इसी निर्णय पे पहुंचोगे, नहीं ये सब माया भ्रम है, अस्तित्व तो वास्तव में केवल पानी का ही है। तो इसी तरह से हम विभिन्न देवी देवताओं के नाम रख लेते हैं, विभिन्न शक्तियों के नाम रख लेते हैं, लोगों को, लोग जैसे मनुष्य होते हैं उसमें कितने नाम होते हैं, किसी का बिजनेसमैन नाम रख लेते हैं, किसी का हम नौकर नाम रख लेते हैं, किसी का ऑफिसर नाम रख लेते हैं, कितने नाम रख लेते हैं, है वो मनुष्य। इसीलिए क्योंकि लाखों लोग उन चीजों को मानते हैं, करोड़ों लोग उसको कहते हैं, इसलिए हमारी बुद्धि भ्रमित जाती है, 1 करोड़ लोग तो कहते हैं इसको, ये झूठ कैसे हो सकता है, यही सत्य होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिसका गुरु नहीं उसकी गति नहीं, पूर्ण ब्रह्म रूप गुरु जिसका नहीं है, उसकी गाइडेंस में जो नहीं चल रहा है, वो ईश्वर के बारे में कभी निर्णय नहीं कर पाएगा कि ईश्वर है क्या, ना कभी उसकी उपासना दुरुस्त हो पाएगी। उपासना तो करता होगा, वो हो सकता है दान पुण्य भी करता हो सकता है सत्य भी बोलता हो, बड़े गुण हो सकते हैं उसके अंदर, लेकिन होगा वो भ्रमित ही, मानसिक क्लेश से जरूर गुजरता होगा, सुख दुख के चक्र में जरूर फंसा रहता हो, मौत का उसके अंदर भय जरूर बना रहता हो। इसीलिए जब तक इस विज्ञान को हम जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा ही नहीं सीखते, अपनी कुछ मान्यता उसमें जो हम जोड़ देते हैं या लोकमत उसमें जोड़ देते हैं, तो वही हम भयंकर गलती कर जाते हैं, और इतना कीमती वक्त हमारा जन्म का इन्हीं साधनाओं में, इन्हीं निश्चयों में लगा रहता है। आम घरों में देखो महिलाएं कैसी भ्रमित रहती हैं, कितने व्रत करेंगी और हर व्रत को करने के पीछे सोचेंगे यदि नहीं हुआ या खंडित हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, और नुकसान वो संसारी सोचेंगे, संसारी नुकसान हो जाएगा मेरा। कोई किसी ग्रह को मानेगी, कोई किसी ज्योतिष को मानेगी, कोई कुछ, कितने मानसिक क्लेश से गुजरती हैं इन मान्यताओं के कारण, और इन ये मान्यताएं उनके दिमाग से निकलती नहीं। नुकसान हो जाएगा, पति मर जाएगा, बेटा मर जाएगा, ये पूजा वो पूजा, तो कितना बड़ा अंधकार हमने खुद खड़ा कर रखा। एक तरफ तो महाराज जी की तालीम जिस पर हम कहते हैं हमारा विश्वास है, बिल्कुल सही तालीम है, कोई इसको मना नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा ये गलत तालीम है, लेकिन ध्यान से पढ़ते भी नहीं उसको, पढ़ भी लिया तो विचार नहीं करते उसके ऊपर। तो इसीलिए महा जी की वाणी भी पढ़ लेते हैं, एक परमेश्वर ध्याय लो दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत है कर पूर्ण विश्वास। कौन सब कुछ दे, मंगत नहीं दे रहा सब कुछ, एक परमेश्वर जो जिसके ध्यान करने की बात कह रहा है वो सब कुछ देता है, सब कुछ वही करता है। तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, वही सब कुछ करने वाला है। जब वही सब कुछ करने वाला है फिर अन्य बचा कहां से, सब कुछ करने वाला सब कुछ करने को बचा गया, फिर सब कुछ के बाद भी कुछ करने को बचा है, फिर तेरे नौ दुर्गे कहां गए, फिर तेरे तेरी आशा भाई नौ दुर्गे पड़ी हुई, एक ईश्वर एक नौ दुर्गे, तेरी बुद्धि कहां गई है। एक नौ दुर्गे की बात नहीं है, हजारों देव देवता बना रखे हमने, ये सोचने को तैयारी नहीं है। भले उसका नाम नौ दुर्गे रख लो, उस ईश्वर का नाम नौ दुर्गे रख लू मैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन निश्चय एक तो है, यही सब कुछ है बात, ये ईश्वर है। ईश्वर अलग है, नौ दुर्गे अलग है। तेरा अज्ञान यहां खड़ा हुआ है और इस अज्ञानता के चक्कर में तू इतने कष्ट उठाता है, इतने तप करता है, सारे सारे निरर्थक चले जाते हैं तेरे को, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। इतना तप तू ईश्वर उपासना के लिए करता तो शायद तेरा बड़ा विकास हो गया। और हम भयभीत होते हैं कि हम 50 साल से करते आए हैं, हमारी माँ ने किया, हमारे पिता ने किया, हमारे दादा ने किया, अब हम नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, भयभीत होते रहते हैं। तो ये मेरी अज्ञानता है, मैं इसका शिकार हूं, और चाहे मेरे 50 जन्म और क्यों ना हो जाए इसका शिकार रहूंगा। यदि कभी इस शिकार इस परेशानी से मैं बचना चाहता हूं तो मुझको किसी भी जन्म में उस एक सदगुरु को पर विश्वास लाना ही पड़ेगा जो वो शिक्षा दे रहा है जो गीता में लिखी हुई है, जो वो शिक्षा दे रहा है जो वेद में लिखी हुई है, जो वो शिक्षा दे रहा है जो वाणी में लिखी हुई है। दुनिया के सारे शास्त्र जो ऋषियों से प्रकट हुए हैं वह एक ही शिक्षा है, उसमें कोई भेद नहीं, लेश मात्र भी कोई भेद नहीं। यदि भेद होगा तो जो सामाजिक मार्गदर्शन किया है उन्होंने समाज के लोगों को, उस समय के चाल चलन के अनुसार, उस समय की मान्यता के अनुसार जो मार्गदर्शन किया है उसमें भेद हो सकता है। जो बाहरी लोकाचार होता है उसमें भेद हो सकता है, मुसलमानों की कुछ अलग मान्यता है, सामाजिक मान्यता है, हिंदुओं की कुछ अलग मान्यता है, लेकिन उसका ईश्वर उपासना से कोई संबंध नहीं। ईश्वर एक है, उसकी उपासना भी वास्तव में एक ही तरह की है। जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी सदगुरु हुए हैं, वो सब अंदर की ही उपासना बता रहे हैं। एक भी ऐसा नहीं हुआ जो बाहर की उपासना बताए, एक भी ऐसा नहीं हुआ। यदि कोई कहता है कि साहब उसने सिखाई तो इसका मतलब वो उसके बारे में ठीक जानता नहीं है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में लोग कहते हैं वो तो मंदिर में देवी की उपासना किया करते थे, ये स्टेटमेंट गलत है। वो देवी के मंदिर में रानी रासमणी के एम्प्लाई थे, उन्होंने उनको अपॉइंट किया था पुजारी के रूप में उस देवी मंदिर में, तो वो कार्य वो किया करते थे। बचपन से ही जिसको अंदर उसका अनुभव हो, जिसको वो कुंडलनी कहते थे, जिसको वो माँ कहते थे, जिसका बचपन से ही जिसको अंदर अंदर अनुभव हो वो कहां उपासना करेगा बाहर, विचार करके तो देखो। और उनकी हालत ये थी कि मंदिर में ही आरती खत्म होती थी तो फूल चढ़ाते ना उनसे, तो फूल अपने सिर पे ही वो डाल लेते थे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि माँ तो अंदर ही है बाहर तो है, बाहर का तो अनुभव को नहीं हो रहा था, तो उनकी स्थिति क्या थी और लोग क्या बातें करते हैं उनके बारे में, और फिर अपना मत सिद्ध करते हैं रामगिरि परमा ऐसे करते थे इसलिए बिल्कुल ठीक है। गलत कुछ भी नहीं है, महाराज जी ने कभी मूर्ति उपासना की को गलत नहीं कहते थे। वो रामकृष्ण परमहंस जी मूर्ति उपासना को गलत नहीं कहते थे, वो कहते थे अपनी श्रद्धा से कोई भी कुछ कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन वही एंड है उपासना का, आगे बढ़ना ही नहीं है। वो तो फिर कोई कक्षा एक में पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है वो, कोई एमए का विद्यार्थी कहे क्या ये कक्षा एक में पढ़ रहा है, इसकी कोई जरूरत है? जरूरत तो है उसकी, प्रारंभ तो वहीं से करेगा वो। तो एक बालक को आप कैसे सिखाओगे ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब कुछ करता है, बालक को सिखा सकते हो? तो बालक को तो आपको मूर्ति भी बनानी पड़ेगी, उसका रूप के प्रति श्रद्धा भी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी कहानियां भी सुनानी पड़ेंगी और कर्मकांड के द्वारा उसकी उपासना भी सिखानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे बालक के मन में विश्वास होता है कि ईश्वर है, ईश्वर हमें देख रहा है, ईश्वर हमको पास भी करा देगा, गलत काम किया मेहनत नहीं करी तो ईश्वर फेल भी करा देगा, सारी आस्थाएं बच्चे में डाली जाती है। तो क्या जिंदगी भर हम बालक ही बने रहेंगे या आगे भी कुछ सीखना है? तो जिस जिसके मन में देवी देवताओं के प्रति आस्था बनी हुई है और वह ईश्वर सत्ता से अलग उनको समझते हैं, तो वो छोटे बालक ही हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से बालक से आगे कुछ भी नहीं है, वो गहरे अज्ञान में ही जी रहे हैं, अभी उन्होंने काफी प्रगति कर ली। तो इसलिए किसी की भी, चाहे ग्रहों के बारे में मान्यता, चाहे भूत प्रेत के बारे में मान्यता, चाहे देवी देवताओं के बारे में मान्यता, या पूरी सृष्टि में किसी भी शक्ति के बारे में कि यदि किसी की मान्यता है पूरे विश्व में, उसमें कोई धर्म का बंधन नहीं है, जाति का बंधन नहीं है, तो वो अज्ञानी जीव ही है। उसको पूर्ण गुरु पर विश्वास लाने की सख्त जरूरत है कि वहीं से उसकी मान्यताएं टूटेंगी। यदि कोई कहता है कि मैंने तो पूर्ण गुरु पर पूरी श्रद्धा है, जैसे हम कहते हैं महाराज जी पर पूरी श्रद्धा है, और साथ में दूसरी चीजें भी चलती रहती हैं, तो आपको पता ही नहीं श्रद्धा का मतलब क्या होता है, ना आपको यह पता है पूर्ण गुरु क्या होता है, ना आपको यह पता है कि गुरु पर श्रद्धा का मतलब क्या होता है, इसलिए आप ये ऐसी बातें करते, अंधकार में जी रहे हो और समझ रहे हो मैं बहुत बुद्धिमान हूं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, इसीलिए आप लोगों की प्रगति रुकी रहती है, क्योंकि मान्यता ही आपने एक की जगह दसियों बना रखी है, कहीं आपका समर्पण है ही नहीं। यदि समर्पण होता तो मैं कहता हूं कि महाराज जी के प्रति मेरा समर्पण है, अरे महाराज जी के प्रति समर्पण का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने जो वाणी में निश्चय दिया है वो पूर्ण सत्य है, मैंने सारी धारणाएं उसके अनुसार अपनी बदलनी है, और यदि नहीं बदलता मैं, मेरी तो हनुमान जी के प्रति भी श्रद्धा है, मैं तो बचपन से मानता आया हूं, वहां भी मंदिर जाता हूं, वहां श्रद्धा से नमन करता हूं, अरे भैया किसी बच्चे के साथ जा रहे हो मान्य हनुमान जी के मंदिर, उसके साथ आप भी नमन कर रहे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन आप श्रद्धा से नमन कर रहे हो कि हनुमान जी भी एक हैं और ईश्वर भी एक है, तो आप गफलत में हो, फिर आप अंधकार में हो। हनुमान जी का नमन करते आपको यदि ये भाव आता है कि प्रभु आप इस रूप में भी धरती पर आए, ठीक है, फिर प्रभु तो अनेक रूपों में जो है लोक कल्याण के लिए धरती पर आए। यदि हनुमान कोई अलग सत्ता समझ रहे हो आप, तब आओ अंधकार में। तब आप अंधकार में हो। मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, 40 दिन पाठ करूंगा, मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, इसका मतलब आप गहरे अंधकार में जी रहे हो, आपके निर्णय में खोट है, आपके अंदर ईश्वर विश्वास नहीं है, अभी आप देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए, अर्थात ईश्वर के अलावा भी कोई शक्तियां हैं जिसको आप देवी देवता कह रहे हो और उन पर आपका निश्चय है, तो बताइए आप ईश्वर भक्ति कैसे करोगे? ऐसा व्यक्ति ईश्वर भक्ति नहीं कर सकता। ईश्वर भक्ति केवल वही कर सकता है जिसके अंदर निश्चय बैठा हुआ है, पूरी सृष्टि में एक ही सत्ता है, एक ही शक्ति है, वो परमेश्वर है, और वो मेरे इस देह का संचालन कर रहा है। और ये देह जिस संसार में पैदा हुई है उस संसार का संचालन कर रहा है, मेरे कर्म का फल भी वही दे रहा है, और इस देह की मौत के बाद मेरा जो मन है, मेरा जो स्वभाव है, मेरे जो कर्म फल हैं, मेरे जो गुण हैं, उन सबकी भी रक्षा वो वही कर रहा है। और नई देह जब वो प्रदान करेगा, वो सारा जो कुछ मेरी कमाई है उसमें वो मुझको वापस लौटाएगा। तो हर मामले में निश्चय आपका ईश्वर का ही निश्चय होना चाहिए। हर सब कुछ वही करने वाला है, उसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है, सब शक्तिहीन है। जितने भी मनुष्य मेरे साथ संबंध रखते हैं उनके द्वारा मेरा जो फायदा होता है, जो नुकसान होता है, वो सब उनके द्वारा प्रभु ही मेरे वास्ते करवा रहे हैं, ना मेरा कोई दुश्मन है, ना मेरा कोई मित्र है। उनके द्वारा मेरा फायदा मेरा नुकसान वो प्रभु ही करवा रहे हैं, इसलिए मेरी दृष्टि उन प्रभु से हटकर कहीं और नहीं जानी चाहिए, तभी मेरी सोच ठीक है, अन्यथा संसारी सोच है। सोच तो है आपकी लेकिन संसारी सोच, इसलिए आप दुश्मनी भी बना लेते हो, मित्र भी बना लेते हो। तो व्यवहार में तो ये बातें होंगी, मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार होता है, दुश्मन के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार होता है, लेकिन निश्चय में मित्र और शत्रु नहीं होता, निश्चय में एक ईश्वर सत्ता ही होती है कि मुझको फायदा करवाने वाली सत्ता, मुझको नुकसान करवाने वाली सत्ता, वो ईश्वर ही है। वो दुश्मन के रूप में मेरे सामने प्रकट हुई है क्योंकि मेरे पिछले कर्म ऐसे थे, पाप कर्म का फल उदय हो गया है, इसलिए वो पाप कर्म का फल दुश्मन के रूप में प्रकट हुआ है मेरा नुकसान करवाने के लिए। तो आपकी दृष्टि केवल ईश्वर पर रहती है कि ये नुकसान जो कराया है ये वो ईश्वर ने ही मेरा करवाया है, ये मुझको सजा दी है उसने मेरे पाप कर्मों की। इसी प्रकार किसी कोई मित्र बन के मेरा फायदा करवा रहा है तो वो भी प्रभु मित्र बन के आए हैं, वही मेरा फायदा करवा रहे हैं, और कोई शक्ति नहीं है किसी के पास। तो जो ईश्वर भक्त है उसकी दृष्टि में ईश्वर ही घूमता है, केवल ईश्वर घूमता है, कोई देवी देवता नहीं होता। यदि दूसरा है तो उसके निश्चय में खोट है, फिर यदि याद रखिए ऋग्वेद की ऋचा आपको सुनाई मैंने, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, ऋचाओं के परम अक्षर ओम, इसको नादरूप ब्रह्म कहते हैं, जिसमें सारे देवता निवास करते हैं। हम कितने देवताओं के नाम लेते हैं, कितने यज्ञ करते हैं देवताओं के नाम, और तो ऋग्वेद की ऋचा ही करिए जिसमें सारे देवता निवास करते। मैं कहां मान लू वेद की बात भी कहां मान रहा हूं, वेद के नाम से मैंने कितने देवताओं को मान लेता हूं, और वेद कह क्या रहा। तो लोकाचार में कितनी मान्यताएं हैं उसका आधार शास्त्र नहीं है, उनके पंडित यही कहेंगे ये शास्त्र की बात है, वो यही सुनाएंगे आपको शास्त्र की बात है ये। इसलिए यदि खुद पढ़कर देखोगे सब कुछ की बात तो सब गायब हो जाएगा, एक ईश्वर ही बचेगा। महाजी की वाणी नहीं कहती है, देवी देव की साधना और गुरु पीर आधार मंगत सबका अर्थ ये सत्करनी ये विचार। सारी साधनाओं का एक ही मतलब है कि सत करनी ही ये विचार। तो सत्कर्णी को हृदय में धारण कर। और सत्कर्णी क्या है कि संसार में जगत की निष्काम सेवा और अंदर एक ईश्वर की उपासना, यही सत्कर्मी। जितनी भी हमारी संसार में मान्यताएं हैं उसका मतलब केवल एक ही है कि वो सारी मान्यताएं तुझको अंतिम निर्णय पर ले आए कि ईश्वर एक है और वो अंतर्यामी है। संसार में जो बंधन है वो कामना का बंधन है, वासना का बंधन है। तो मैंने इस वासना से निवृत्ति के लिए मैंने क्या करना है, निष्काम सेवा करनी है। कोई कामना रखे नहीं कि इसका ये फल मुझे प्राप्त होगा, निष्काम सेवा। तो फल कौन सा चाहिए तुझको, निष्कामता रूपी फल चाहिए। तेरे अंदर से कामना ही उठना बंद हो जाए, इसलिए तू सेवा कर रहा है। इसीलिए सत्कर्मी क्या हुई फिर, कर्म के रूप में निष्कामता और याद के रूप में एक परमेश्वर का ध्यान, ये सत्कर्मी। तो हम देवी देवताओं को सत्कर्मी के लिए उपासना कर रहे हैं या हमने मतलब सिद्ध करने के लिए उपासना कर रहे हैं? आप किसी को देख लो, मन में कोई कामना हो जरूर होगी उसे। कोई व्रत करेगा, कोई उपासना करेगा, कहेगा मुझे कोई लड़की होगी, शादी नहीं, पति अच्छा मिल जाएगा, नौ दुर्गे की उपासना करूंगी मैं, बृहस्पति के बदले रखूंगी मैं। सब कामना वाली पूजा। जो कामना तेरे जन्म मरण का कारण है उसको तू पालना है, देवताओं की भक्ति करके उसको तू पालना है। जो सदगुरु है वो कह रहा है कामना ही तो तेरा दुश्मन है, ये तो हमेशा ही तुझको क्लेश देगा, हमेशा ही तुझको दुख देगी, इसलिए कामना से मुक्ति के लिए तू ईश्वर की उपासना कर, गुरु ये सिखा रहा है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है बार बार कि समता विलास का अध्ययन करो। हर बात का निर्णय वहां दिया हुआ है, आप यदि गहराई से अध्ययन करने की कोशिश नहीं करोगे तो किस किस की बातें सुनते रहोगे। सत्संग में भी लोग अपने अपने मान्यता के साथ बातें सुना देते हैं आपको, सत्संग सुन के भी आप भ्रमित हो जाते हो, कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है, जैसी उसकी अक्ल है, जैसी उसकी स्टडी है, जैसी उसकी अपनी मान्यता है। तो इसलिए जब तक खुद स्टडी नहीं करोगे, खुद निर्णय पर नहीं पहुंचोगे, उसके साथ आप सत्संग श्रवण भी करोगे, कोई कोई ठीक बात ही बताता होगा, मिलान तो कर लो, जो बात सुनी है मैंने वक्ता के द्वारा वो शास्त्र से मेल भी खाती है नहीं खाती है, इसके लिए आपको खुद पढ़ना तो पड़ेगा। जब पढ़ोगे, इस तरह से विचार करोगे, तब खुद इस निर्णय पर पहुंच जाओगे कि मैंने बचपन से जो देखा देखी सीखा है, घर की जो ट्रेडिशन सीखी है, सामाजिक जो ट्रेडिशन सीखी है, ये मान्यताएं हैं। तरह तरह के कपड़े पहन लेते हैं, तरह तरह की देवता धारण कर लेते हैं हम जीवन में, सब मान्यताएं हैं, ये कुछ भी नहीं है, अपने आप में इनका कोई अर्थ नहीं। इसलिए जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो तो आपका विकास पूजा का क्या होता है कि आपकी उपासना एक ईश्वर की उपासना बन जानी चाहिए। और शास्त्र का स्वाध्याय करने को क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि शास्त्र का स्वाध्याय जो करेगा वो सारी मान्यताओं से मुक्त होकर एक ईश्वर की मान्यता, एक ईश्वर का निश्चय उसके अंदर रह जाएगा, बाकी सब गायब हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें और गांठ बांध लें कि ईश्वर केवल एक है, और यदि कोई देवी देवता हैं सृष्टि में जिनके नाम आते हैं, आप वैदिक लिटरेचर उठा के देखोगे तो इन देवी देवताओं के नाम नहीं है जो आप लेते हो, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, वहां दूसरी देवता है, वहां 33 देवता के नाम आते हैं। और लोगों ने क्या बना लिए, 33 करोड़ बना लिए, वहां 33 कोटि है, कोटि का मतलब श्रेणी, और कोटि का लोगों ने बना लिया करोड़। सुनते हो लोगों की बातें, 33 करोड़ देवता होते। तो शास्त्र में लिखा कुछ होता है, चीजें कुछ और हैं, और वो सारे देवता मेरे शरीर में स्थित हैं। वो सारे देवता मेरे शरीर में स्थित हैं, इसलिए पूरा ब्रह्मांड है, ये शरीर नहीं है, पूरा ब्रह्मांड है। जो पिंड है सो ब्रह्मांड है, जो पिंड में है वो सारे ब्रह्मांड में। इसमें और संसार में कोई भेद नहीं है, एब्सोल्युटली निल। सब कुछ ईश्वर ने इसी में डाल दिया है, इसलिए इसके अंदर सब कुछ अनुभव हो जाता है। मोक्ष भी इसी शरीर के अंदर ही प्राप्त हो जाता है। ये ब्रह्मांड है, ये इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। सब कुछ इसी के अंदर दर्शन हो जाता है। कहां भटक रहा हूं, बाहर कुछ है ही नहीं, केवल एक कल्पना ही है बाहर। जैसे स्वप्न की कल्पना होती है, ऐसी कल्पना है, कुछ भी नहीं है। इसलिए अंदर जाने की कोशिश करो। गुरु ने आपको अंदर की ही उपासना सिखाई है। और मन मेरा बाहर भागता है, आप देखो मन आपका बाहर भागता है, तो इसलिए बाहर आपको परहेज बताया गया है, संयम बताया गया है, मर्यादा बताई गई है। नहीं तो तेरी जो आयु रूपी पूंजी है लुट जाएगी, तेरी संसार में लुटा देगा तू इसको। तो जिसने सीख लिया कि खजाना अंदर है, वो बाहर चंद रुपयों के लिए मारा मारा नहीं घूमेगा, वो जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा वो। तो इसीलिए कोशिश करो सिमरन में मन लगाने की। और उस मन लगाने के लिए आपको जरूरी है कि संसार में जो तरह तरह के निश्चय बैठे हुए हैं, इस निश्चय से आपका मन टूटना चाहिए। कोई निश्चय नहीं बचना चाहिए संसार में, तेरा संसार में कोई भला नहीं है। संसार तो तुझको लूट लेगा, तेरी आयु को भी लूट लेगा, तेरा कीमती वक्त बर्बाद कर देगा। इसलिए गुरु की बात मानो, शास्त्र की बात मानो, उसके अनुसार अपने निश्चय को जल्दी से जल्दी बदलो, ताकि वक्त बर्बाद ना हो। आपने कि लोगों की बुराइयां नहीं करनी, कोई देवी को मानता है उसकी आलोचना नहीं करनी, तू देवी को क्यों मानता है। अरे वो जहां खड़ा है वो खड़ा रहने दो उसको, तुमने अपनी उन्नति करनी है। यदि तुम सही चल पड़े तो हो सकता है समाज में आपकी चाल को देखकर, आपकी बात को देखकर, आपके जीवन को देखकर कोई प्रेरणा ले ले। जिस पर जिसका आप पर विश्वास आ जाए उसको सही बात बता दो, माने उसकी मर्जी ना माने उसकी मर्जी, उसके पीछे क्यों पड़ जाता हूं मैं, इसको बदल के छोड़ूंगा। तो संसार में निर्लेप होकर चलना चाहिए। और सब कुछ खजाना मेरा इस देह के अंदर मौजूद है, सारे ब्रह्मांड का मालिक ईश्वर इस देह के अंदर मौजूद है। तो मैंने उसकी ओर जाना है, उसके लिए जीवन व्यतीत करना है, और मेरे जीने का कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। मनुष्य जन्म इसीलिए दिया गया है, प्रभु के सिमरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाए। ये दुर्लभ मानव जन्म है, साधारण जन्म नहीं है ये। इसकी कीमत जो आप लगा रहे हो ना कि मैं 1 करोड़ का बैलेंस बैंक बैलेंस छोड़ के जाऊंगा बच्चों के लिए, तो 1 करोड़ तो तेरे 2 कौड़ी के बराबर भी नहीं है। तेरा जन्म तो अरबों में भी नहीं, अरब रुपए भी कीमत नहीं है इसकी, बेश कीमती है, अरब रुपए तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो असली कीमत लगाना इस शरीर की, इसमें सारे ब्रह्मांड का मालिक ईश्वर मौजूद है। मैंने उसकी ओर जाना है, तब जाके मेरे कष्ट खत्म होंगे, ये जन्म मरण का रोग खत्म होगा, और ये मानव जीवन सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।